रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में सेना परिचालन करने का सरकार समक्ष सिफारिश करने का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का निर्णय। नेपाल टेलीकॉम के विलिंग विवाद से जुड़ी जांच समिति ने संचार मंत्री जगदीश खरेल को पेश की रिपोर्ट। ऑनलाइन धोखाधड़ी बढ़ने पर प्रहरी ने सभी से सतर्क रहने का किया अनुरोध। और अफगान सीमा पर पाकिस्तानी सेना की आतंकवादी लक्षित कार्रवाई में 23 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक ने आगामी फागुन 21 में होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए सेना परिचालन की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। रक्षा मंत्रालय के सचिव सुमन राज अर्याल ने जानकारी दी कि सिंह दरबार स्थित परिषद के कार्यालय में आज हुई बैठक में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने के लिए सेना के परिचालन की सरकार के समक्ष सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सचिव अर्याल ने बताया कि बैठक में देश की वर्तमान सुरक्षा स्थिति और उससे उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों पर भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि बैठक में 12 घटना और उससे पैदा होने वाली सुरक्षा चुनौती तथा आगामी दिनों में अपनाई जाने वाली रणनीति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की द्वारा बुलाई गई इस बैठक में सुरक्षा निकायों के प्रमुखों ने सुरक्षा स्थिति पर उसके प्रभाव के बारे में जानकारी दी। बारा जिले के जीतपुर सिमरा क्षेत्र में जनजीवन शाम से सामान्य होता रहा और आज दोपहर 1 बजे से लगाए गए कर्फ्यू आदेश को रात 8 बजे से हटा लिया गया है। यह जानकारी जिला प्रशासन कार्यालय बारा ने दी है। बारा के सहायक मुख्य जिला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी छवि रमन भट्टराई ने बताया कि जिला सुरक्षा समिति की बैठक में कर्फ्यू आदेश का समय बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया गया और सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। सुरक्षा संवेदनशीलता के कारण लगाए गए कर्फ्यू हटाने के बाद पथलैया बीरगंज सड़क खंड में वाहनों का संचालन शुरू हो गया है और जनजीवन सामान्य होता जा रहा है। और यह जानकारी बारा के प्रमुख जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने दी। इस बीच जिला सुरक्षा समिति की आज हुई बैठक में बारा के जनजी समूह के नेताओं को बातचीत और वार्ता के लिए बुलाया गया था। हालांकि उनकी ओर से आवश्यक तैयारी के साथ कल वार्ता में आने की जानकारी मिली है। यह बात प्रमुख जिला अधिकारी मिश्र ने बताई। इसी बीच जनजी पर हमला करके फरार रहे अरविंद शाह सहित नेकपा एमाले से निर्वाचित 2 वार्ड अध्यक्ष धन बहादुर श्रेष्ठ और कयामुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर अदालत से समय सीमा बढ़ाकर आवश्यक कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। यह जानकारी सहायक मुख्य जिला अधिकारी भट्टराई ने दी। इस बीच कर्फ्यू के कारण कल दिनभर सिमरा विमानस्थल बंद रहा, लेकिन आज सुबह से सभी उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। यह जानकारी सिमरा विमानस्थल के प्रमुख विष्णु प्रसाद अधिकारी ने दी। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी के संयोजक पुष्पलाल दाहाल प्रचंड ने बारा के सिमरा में हुए विरोध प्रदर्शन और अधिक हिंसक और नियंत्रण से बाहर न जाने का अनुरोध करते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। आज जारी एक वक्तव्य में संयोजक प्रचंड ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक और वैचारिक मतभिन्नता होना स्वाभाविक है, लेकिन सिमरा की घटना को हिंसा या उत्तेजना में बदलना लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं है। वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया है कि राजनीतिक और वाक्य स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए राजनीतिक दलों और दल के नेताओं को बिना बाधा के आवागमन करने, सभा सम्मेलन करने का वातावरण बनाने के लिए सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया गया है। नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की आज होने वाली बैठक अब इसी मंगसिर 6 गते शनिवार को होगी। पार्टी के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौड़ेल ने जानकारी दी कि पार्टी केंद्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन ललितपुर में आज दोपहर 2 बजे होने वाली बैठक अब इसी मंगसिर 6 गते शनिवार को दोपहर 1 बजे होगी। उन्होंने बताया कि बैठक में केंद्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी, सदस्य, आमंत्रित सदस्य और 7 प्रदेश कार्य समितियों के अध्यक्षों की उपस्थिति के लिए निर्देशानुसार अनुरोध किया गया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि मंत्रालय नेपाल टेलीकॉम की आंतरिक स्वायत्तता में बाधक नहीं बनेगा। सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में आज टेलीकॉम के विलिंग प्रकरण को लेकर उठे विवाद के संबंध में गठित जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए संचार मंत्री खरेल ने कहा कि टेलीकॉम की बिलिंग प्रणाली और खरीद समझौते में मंत्रालय की किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। मंत्री खरेल ने कहा कि रिपोर्ट की राय और सुझावों को आगामी दिनों में होने वाली खरीद प्रक्रियाओं में सहायक दस्तावेज के रूप में लागू किया जाएगा। इस अवसर पर जांच समिति के संयोजक मणिराम गोलाल ने बताया कि टेलीकॉम की बिलिंग प्रणाली के नए ठेके की पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा न पड़े, इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। समिति के संयोजक गेलाल ने जानकारी दी कि रिपोर्ट में नेपाल टेलीकॉम के प्रतिस्पर्धी बाजार में स्थापित होने, ग्राहकों के व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रखने और स्थिति सुनिश्चित करने, प्रविधि में निरंतर शोध, विलिंग प्रक्रिया का सहज स्थानांतरण करने जैसे नीतिगत सुधार और निर्णयों के लिए सुझाव दिए गए हैं। टेलीकॉम के बिलिंग प्रकरण को लेकर उठे विवाद और इस मामले में सरकार वालों की दिलचस्पी को देखते हुए इस संबंध में मंत्रालय द्वारा पूर्व सचिव मणिराम गेलाल की संयोजकत्व में 21 दिन की समय सीमा सहित गठित जांच समिति ने आज रिपोर्ट सौंपी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। पिछले समय में ऑनलाइन से ठगे जाने का क्रम बढ़ने को लेकर नेपाल प्रहरी ने उससे बचने का अनुरोध किया है। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू ने एक सार्वजनिक सूचना जारी करके ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए 7 सूत्रीय अनुरोध जारी किया है। परिसर के प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराय ने नागरिक प्रलोभन देकर रकम ठगी में पड़ने वाले दैनिक घटना हो रहा है, इसलिए सचेतना के लिए सूचना जारी किया है। उनके मुताबिक सामाजिक संजाल फेसबुक, ईमो, व्हाट्सएप, वाइबर, इंस्टाग्राम लगायत के माध्यम से आपको चिट्ठा पड़ा है और रकम को प्राप्त करने के लिए राजस्व देना होगा कहकर रुपए भेजने पर मजबूर करके ठगा जा सकता है, इसलिए उसे सचेत रहने का सभी से अनुरोध किया है। सामाजिक संजाल तथा अन्य ऑनलाइन माध्यम से सस्ते दर में सामान दिखाकर अग्रिम एडवांस रकम भेजने के लिए कहकर ठगा जा सकता है, इससे भी बचने के लिए ध्यान देने का अनुरोध किया है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरा के तत्कालीन निमित कार्यालय प्रमुख अशोक कुमार सिंह सहित 6 लोगों के विरुद्ध आज विशेष अदालत काठमांडू में मुकदमा दर्ज किया है। सार्वजनिक संपत्ति में हानि नुकसानी करके भ्रष्टाचार करने के आरोप में शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाजुरा के तत्कालीन इंजीनियर सुनेश कुमार चौरसिया, सब इंजीनियर नरेश रावत तथा प्रसूति केंद्र भवन निर्माण उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष पारस रोकाया, सचिव मुना रोकाया और कोषाध्यक्ष खड़क एड़ी विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। यह जानकारी आयोग के प्रवक्ता राजेंद्र कुमार पौड़ेल ने दी। पशुपति क्षेत्र विकास कोष ने सर्वसाधारण को भगवान पशुपति के नागमणि, मुकुट, कवच, एक मुखे रुद्राक्ष लगायत प्राचीन सामग्रियों का दर्शन कराया है। कोष ने हर साल मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी और मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या के दिन नागमणि, मुकुट, कवच, एक मुखे रुद्राक्ष सहित प्राचीन महत्व के गरगहना लगायत की सामग्री सर्वसाधारण को दिखाने के परंपरा अनुसार आज सुबह 9 बजे से 11:15 बजे तक दर्शन कराया गया है। यह जानकारी कोष के निमित्त सदस्य सचिव सुभाष चंद्र जोशी ने दी। निर्वाचन आयोग ने आगामी फागुन 21 को निर्वाचन के लिए मतदाता की आयु 18 वर्ष पूरी होने की निर्दिष्ट तिथि निर्धारित करने और मतदाता सूची को अद्यावधिक करने के कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। आयोग द्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि फागुन 20 तक 18 वर्ष के होने वाले मतदाताओं की सूची इसी मंगसीर 20 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने बताया कि उक्त सूची में किसी भी त्रुटि के सुधार के लिए किसी ने गलत विवरण देकर सूची में नाम शामिल कराया हो तो उसके विरोध में शिकायत देने के लिए किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर शामिल होने पर एक ही स्थान पर बनाए रखने के लिए अनुरोध करने के लिए तथा मृतक या नागरिकता त्याग चुके मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए मंगसीर 21 से 27 तक संबंधित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में अनुरोध शिकायत या सूचना दी जा सकती है। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत नारायणघाट बुटवल सड़क खंड के नवलपुर और चितवन जोड़ने वाली नारायणी नदी क्षेत्र में दो दिन रात के खंड में सड़क बंद किया जाएगा। उस खंड के नारायणी नदी पुल से पश्चिम ओर की भाग में सड़क पीच करने के लिए रात में 5 घंटा सड़क को बंद किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वैसे तो पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में चरमपंथी घटनाएं बहुत बढ़ गई है, लेकिन इस हफ्ते राजधानी इस्लामाबाद में हुए एक आत्मघाती हमले में देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस हमले में 23 लोगों की मौत हो गई है और 27 दूसरे लोग घायल हो गए थे। इस्लामाबाद के हमले से एक दिन पहले वाना कैंडेट कॉलेज पर भी हमला हुआ था, जिसके बाद इमारत के अंदर छिपे 4 चरमपंथियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को ऑपरेशन कई घंटे तक जारी रहा था। 11 नवंबर को एक तीसरा हमला भी हुआ, जब खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्लामाइल खान के इलाके के सुरक्षा अधिकारियों पर हुई एक आईडी हमले में कई अन्य अधिकारी घायल हो गए। 14 नवंबर के दिन पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि उन्होंने इस्लामाबाद आत्मघाती हमले में शामिल तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार का कहना है कि आत्मघाती हमले करने वाले के हैंडलर ने पूछताछ के दौरान किया है या माना है कि टीटीपी के अफगानिस्तान स्थित कमांडरों ने टेलीग्राम के जरिए संपर्क कर इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला करवाने को कहा था। पाकिस्तान सरकार ने यह आरोप भी लगाया कि अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी का शीर्ष नेतृत्व हर कदम पर इस्लामाबाद हमले में शामिल नेटवर्क को गाइड कर रहा था। याद रहे कि गैर कानूनी घोषित टीटीपी ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि निर्वाचन में सेना परिचालन करने का सरकार समय सिफारिश करने का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का निर्णय। नेपाल टेलीकॉम के बिलिंग विवाद से जुड़ी जांच समिति ने संचार मंत्री जगदीश खरेल को पेश की रिपोर्ट। ऑनलाइन धोखाधड़ी बढ़ने पर प्रहरी ने सभी से सतर्क रहने का किया अनुरोध। और अफगान सीमा पर पाकिस्तानी सेना की आतंकवादी लक्षित कार्रवाई में 23 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।